यहाँ पे तो
Recording in progress.
अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिही लजीन अस्तफा अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास इन्नल्लाहा समीउन बसीर يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو سورة الحج کی یہ بس آخری آیات چل رہی ہیں ہماری اس کلاس میں معارف القرآن کی جلد نمبر 6 سے ہم ان کے معارف و مسائل پڑھنا شروع کر چکے تھے کل کی کلاس میں تو اس میں یہ جو آیت ہے وہ جاہدو فی اللہ حق جہادی ہی ٹھیک ہے کہ تم جہاد کرو مجاہدہ کرو محنت مشقت کرو اپنی بھرپور کوشش کرو اور اس راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو برداشت کرو قربانیوں کو برداشت قربانیوں کو ادا کرو ٹھیک ہے یہ سب کیا ہے جہاد کا مطلب مفہوم ٹھیک ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرو یعنی جیسے ہم جہاد کرتے ہیں اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھانے کے لیے ہم جہاد کرتے ہیں کوئی انٹرٹینمنٹ حاصل کرنے کے لیے ہم جہاد کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرنے کے لیے ہے نا اس کے لیے بھی تو تکلیفیں برداشت کرتے ہیں نا کہ بھی ہمارے رشتہ دار دوسرے ملک میں رہتے ہیں تو ہم اتنا پیسہ خرچ کر کے جو ہے وہ ٹکٹ خریدتے ہیں اور جو ہے وہ سفر کی مشکلات ہوتی ہیں اچھی خاصی مشکلات ہوتی ہیں آج کے دور کے اندر بھی ہے نا عورتیں جو ہے وہ بچوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ سفر کر رہی ہوتی ہیں ہے نا اور جتنی قربانی دے رہی ہوتی ہیں اور جتنا جو ہے وہ مشکلات برداشت کر رہی ہوتی ہیں مجاہدہ کر رہی ہوتی ہیں کس کے لیے رشتہ داروں سے ملاقات کرنے کے لیے امی ابو سے مل کر کے آؤں گی ٹھیک ہے نا یا کوئی اور چیز تنخواہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ دفتر جا رہے ہوتے ہیں دکان میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں دن رات ایک کر کے 24 آورس کے آج کل لوگ ملازم ہوتے ہیں ٹھیک ہے علم سیکھنا ہے وہاں بھی تاکہ اچھا جو ہے وہ کمائی کر سکیں تو علم اوہو بہت زبردست طریقے سے لگ کر کے علم حاصل کرنا ہے بچوں کو پڑھانا ہے نا کتاب اور سکول اور کالج اور یونیورسٹی اور سب کچھ تو جہاد تو کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کے لیے انسان جو ہے وہ جہاد کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ رب العزت کو جس جہاد کی یعنی جو ڈیمانڈ ہے یا توقع ہے اپنے بندوں سے اور جس کا ان کو حکم فرما رہے ہیں وہ کیا ہے جاہدو فی اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو کیا مطلب کہ ایک تو دین سیکھو میرے احکامات کو سیکھو ٹھیک ہے کہ میں تم سے چاہتا کیا ہوں اپنے مقصد زندگی کو سیکھو کہ کیا ہے کیوں میں نے تمہیں یہاں پہ بھیجا ہے ایسے ہی بس ٹائم پاس کرنے کے لیے بھیجا ہے یا کچھ کرنے کے لیے بھیجا ہے کچھ بننے کے لیے بھیجا ہے اس مقصد زندگی کو سیکھو اور پھر اس مقصد زندگی کو کیسے ادا کرنا ہے اس کے اوپر پھر عمل کرو ٹھیک ہے نا ایسے ادا کرو اور اس کے اندر پھر صرف یہ نہیں کہ دین سیکھتے رہو قرآن مجید کے احکامات سیکھتے رہو ہے نا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے روزہ کیسے رکھنا ہے زکات کیسے دینی ہے حج کیسے کرنا ہے نہیں بلکہ اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے کیسے جو ہے وہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا ہے اور اس کے اندر پھر رشتہ داروں سے ملاقات دفتر جانا دکان پہ بیٹھنا تعلیم حاصل کرنا اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے بڑھانا ہر چیز اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے کیونکہ ہر چیز جو ہے تم میرے ذکر کے ساتھ کرو میرے دھیان کے ساتھ کرو ٹھیک ہے میرے دھیان کے ساتھ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاؤ غفلت کے ساتھ مت جاؤ جیسے شروع کی کسی کلاس کے اندر ہم نے بات کری تھی نا عبرت کے ساتھ سیر و تفریح بھی کرنی ہے اپنے رشتے اپنے خاندان والوں کو بچوں کو لے کر کے، اگر تم نے کہیں بھی جانا ہے رائٹ، شملہ جانا ہے یا تم نے مری جانا ہے، ایبٹ آباد جانا ہے، اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہو نا، عبرت کی نگاہ کے ساتھ جاؤ، غفلت کے ساتھ مت جاؤ، ٹھیک ہے نا. سیر تفریح کو اسے منع نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا، رشتے داروں سے ملنے سے منع نہیں کر رہے، دکان پہ اور جاب پہ جانے سے بالکل منع نہیں کر رہے، لیکن غفلت کے ساتھ نہیں. کیا مطلب غفلت کے ساتھ نہیں؟ ایک تو غفلت کی دو آپ لوگوں کو بتائی تھی، کسی کو اگر یاد ہو تو ایز اے کوئز رائٹ. غفلت کے دو درجے ہوتے ہیں، غفلت کے ساتھ مری چلے گئے، غفلت کے ساتھ رشتے داروں کے پاس چلے گئے. تو دو درجے ہوتے ہیں غفلت کے، ایک لوور درجہ، ایک اپر درجہ. کیا تھے وہ دو درجے، کسی کو یاد ہے اگر؟ جی، کیا دو درجے تھے؟ جاہدو کی تعریف کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں، جاہدو فی اللہ کی تعریف میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. غفلت کے ساتھ یہ سارے مجاہدے نہ کرو، ٹھیک ہے، سفر کے مجاہدے، تعلیم کے مجاہدے، کمانے کے مجاہدے، غفلت کے ساتھ نہ کرو، بلکہ عبرت کے ساتھ کرو. کیا مطلب غفلت کے ساتھ نہ کرو؟ غفلت کے کیا دو درجے ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو کلاس میں بتائے تھے؟ ایک گناہ کا اور دوسرا اللہ کی یاد سے بغیر کا. نہیں جی، آپ نے تو ایک ہی کو جو ہے نا وہ دو الفاظ میں بیان کر دیا، ایک ہی درجے کو دو الفاظ میں آپ نے بیان کر دیا، یا دو 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 طریقے سے آپ نے بیان کر دیا، لیکن کم از کم آپ نے غفلت کا اوپر والا درجہ تو بتا دیا الحمدللہ، ٹھیک ہے نا. نیچے والا درجہ کیا ہوتا ہے غفلت کا؟ ایک نہ عبرت کے ساتھ، نہ گناہ کی نیت کے ساتھ، اور دوسرا گناہ کی نیت کے ساتھ نہیں، گناہ کی نیت کے ساتھ چلو. ہاں، پہلا درجہ کیا تھا؟ لوور درجہ، کم تر درجہ کیا تھا؟ کہ بھائی ایسے ہی بالکل جس کو کہتے ہیں نا یعنی کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے، کوئی غور ہی نہیں کر رہے، کوئی دھیان ہی نہیں دے رہے، بے دھیانی جس کو کہتے ہیں نا اردو زبان کے اندر، ہے نا، بس ایسے ہی جو ہے وہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، رائٹ. اور جو ہے وہ کسی چیز سے عبرت حاصل ہی نہیں کر رہے، کسی چیز کو جو ہے وہ نیت کے ساتھ دیکھ ہی نہیں رہے، اچھی نیت کے ساتھ دیکھ ہی نہیں رہے، بس ایسے ہی جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا سلیپ واکنگ جس کو کہتے ہیں، سلیپ واکنگ سمجھتے ہیں نا، کہ ایک انسان جو ہے وہ سو رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ چل بھی رہا ہے، ہے نا. دیکھے کبھی آپ نے خود کبھی کری ہے سلیپ واکنگ؟ اچھا خاصا لوگ جو ہیں وہ بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بالکل یہی معاملہ جو ہے نا وہ غفلت کے دوسرے درجے کا ہوتا ہے، جس کو سلیپ واکنگ کہتے ہیں. کسی چیز کو توجہ، کوئی دھیان نہیں، کوئی توجہ نہیں، کوئی پے اٹینشن نہیں، جیسے کلاس میں بیٹھے ہوئے رائٹ، اور سمجھ میں کوئی دھیان ہی نہیں دے رہے کیا بات ہو رہی ہے، کیا سن، کیا اچھا میسج آیا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا میسج آیا، ویسا ہے نا، ٹھیک ہے. یہ پہلا درجہ ہے، لوور درجہ ہے غفلت کا. غفلت کا اپر درجہ، ہائر درجہ کیا ہے؟ کہ گناہ کے ساتھ دیکھنا، ٹھیک ہے، یعنی حرام چیز کو دیکھنا، حرام چیز سے جو ہے نا وہ لذت حاصل کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ غفلت کا اونچا درجہ ہے. جی، اب آپ نے ماشاءاللہ جواب دیا ادھر مردوں کی طرف، کہ ایک بغیر سبق حاصل کرنے والا اور ایک گناہ کے ساتھ دیکھنے والا، یہ دو درجے ہیں غفلت کے، ٹھیک ہے. تو جاہدو فی اللہ حق جہادی، ٹھیک ہے، کہ تم اللہ کے راستے میں جو کچھ کرنا ہے اللہ کے راستے میں کرو، یعنی غفلت کے ساتھ نہ کرو، عبرت کے ساتھ کرو، نہ غفلت کے لوور درجے کے ساتھ کرو، نہ غفلت کے اپر درجے کے ساتھ کرو، بلکہ عبرت کے ساتھ یہ زندگی گزارو، ٹھیک ہے. اور حق کا جہاد ہی کہ جیسے کہ مجاہدہ کرنے کا حق ہے، اور اس کے بارے میں پھر ہم نے بہت ساری تفصیلات تفسیر پڑھ لی تھی، کل کی کلاس میں تو ہو گئی تھی، باقی ریکارڈنگ موجود ہے سن لیے گا. تو اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فائدے کے اندر لکھا نا، کہ تفسیر مظہری میں اس دوسری تفسیر کو اختیار کر کے شاید سے مسئلہ نکالا کہ صحابہ کرام جب مقابلے کفار میں جہاد کر رہے تھے، خواہشات نفسانی کے مقابلے کا جہاد تو اس وقت بھی جاری تھا، ٹھیک ہے نا، یعنی جو لوور وہ جو جہاد. اب ہم غفلت کے ٹاپک ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اب ہم آگے آ چکے ہیں جہاد کے ٹاپک کے اوپر، ٹھیک ہے نا، حق کا جہاد ہی، ٹھیک ہے. تو اس میں پھر وہ حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی تھی جس کے سند کے بارے میں کلام ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا فرمایا تھا کہ جو میدان جنگ کے اندر تم جہاد کر رہے تھے نا، یہ جہاد اصغر تھا، और जब तुम वापस आ गए हो अपने घरों के अंदर, अपने शहर के अंदर, ये जहाद अकबर है। ठीक है, तो इसके ऊपर मसला यानी एक बाकायदा एक क्वेश्चन करने वाला जो एक एक पॉइंट होता है जिसके बारे में जहन में सवाल उभरता है, इंसान अपने उस्ताद से सवाल करता है, इसको मसला कहते हैं। ठीक है, तो क्या मसला निकाला उलमा ने कि साहबे कराम जब मुकाबले कुफार में जिहाद कर रहे थे, ख्वाहिशात नफसानी के मुकाबले के जिहाद तो उस वक्त भी जारी था, वहां पर भी उनके अंदर नफ्स था, वहां पर भी जो है वो शैतान मौजूद था। ये तो नहीं कि जब जो है वो मैदान जंग में लड़ रहे हैं तो शैतान साहब भाग गए, भाई वो तो एक शैतान भागता है, लेकिन साथ वाला शैतान जिसके बारे में हजरत जी कल के बयान में बता रहे थे कि वो दिल के बराबर में होता है, राइट, दिल के बराबर वाला शैतान जिसको खन्नास कहा, वो खन्नास तो कहीं नहीं जाता, राइट। तो मैदान जंग में तलवार से लड़ रहे हैं, खन्नास साहब तो अपना काम उधर भी करने की कोशिश कर रहे हैं, बेशक कामयाब नहीं हो रहे होंगे लेकिन कोशिश में तो वो बैठा हुआ ताक में तो बैठा रहता है। ठीक है ना, तो मैदान जिहाद में भी नफ्स भी साथ साथ रहता है और खन्नास भी साथ साथ रहता है। ठीक है, तो भाई ख्वाहिशात नफसानी के मुकाबले का जिहाद तो मैदान जंग में भी जारी था, मगर हदीस में उसको वापसी के बाद जिक्र किया। ठीक है, तो ये क्यों किया, इसकी वजह खाली इतनी है कि वहां पर जो था ना वो जो जिहाद वहां पे कर रहे थे, तो इसमें इशारा ये है कि अहवाए नफ्स के मुकाबले का जिहाद अगरचे मैदान कारजार में भी जारी था मगर आदतन ये जिहाद शेख कामिल की सुहबत पर मौकूफ है, इसलिए वो जिहाद से वापसी और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी के वक्त ही शुरू हुआ। ठीक है, क्या मतलब, ये जो हदीस मुबारक है ये किस वाले जिहाद के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई? ठीक है, किस वाले जिहाद के मौके पर, जंगे बदर के मौके पर फरमाई? नहीं। जंगे उहद के मौके पर फरमाई? नहीं। जंगे खंदक के मौके पर फरमाई? नहीं। बल्कि किस जिहाद के मौके पर, किस जंग के मौके पर फरमाई, हमें उसका नाम नहीं पता, लेकिन उसके बारे में एक बात तो 100% कंफर्म है ना कि ये उस जिहाद के बारे में फरमाई थी जहां पर, कोई बताएगा क्या बोलना चाह रहे हैं, जहां पर बदर उहद और खंदक से एक मुख्तलिफ मामला था, वो क्या था? किसी ऐसे जंग के बारे में नबी अलैहि सलाम ने, किसी ऐसे जंग के मौके पे नबी अलैहि सलाम ने फरमाई जिस जंग में, जी चले जी, वेयर ही डिड नॉट गो हिमसेल्फ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर मौजूद नहीं थे। बिल्कुल सही, ठीक है, यानी सहाबा को भेजा हुआ था, नबी अलैहिस्सलाम जो है मदीना मुनव्वरा में थे, तो वहां पर नबी अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं थे जो कि सहाबा के शेख, सहाबा के शेख वहां पर मौजूद नहीं थे। ठीक है, तो ये वाला जो ख्वाहिशात नफसानी वाला जो जिहाद है ना, ये शेख के बगैर जो है वो आदतन नहीं होता, एज एन एक्सेप्शन तो शायद कोई कर ले, विच इज ऑल्सो एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन। ठीक है, लेकिन आदतन जो है वो अल्लाह ताला का, यानी अल्लाह ताला का तरीका ये है कि अल्लाह ताला ने शेख भेजे इस दुनिया के अंदर। नबी अलैहिस्सलाम क्या थे? शेख। किसके शेख थे? हमारे शेख डायरेक्टली नहीं थे, ठीक है ना, सहाबा कराम के डायरेक्ट बिला वास्ता डायरेक्ट शेख सहाबा कराम के थे। हम तो उनको अपने बड़े के तौर पर अपना शेख मानते हैं ना, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम से पूछना, नबी अलैहिस्सलाम को आगे से जवाब देना, ये तो नहीं होता सिवाय इसके कि किसी को ख्वाब में आ जाए, ज़ियारत हो जाए माशाल्लाह, फिर तो वो ख्वाब में पूछेगा, उसकी भी कोई कंफर्म वो नहीं होता कि भाई वाकई ऐसा पूछा, तो अब उसकी बुनियाद पर कोई आप शरी हुज्जत तो नहीं बना सकते उस ख्वाब को, तो ख्वाब में किसी की हो जाए तो वही हो जाए, लेकिन कितनों को ख्वाब में ज़ियारत होती है नबी अलैहि सलाम की? तो भाई हमारे शेख तो वो हैं जो कि जिंदगी के अंदर हमारे साथ हैं, जिनके साथ हम इस्लाही ताल्लुक बनाते हैं और उनसे हम पूछते हैं। ठीक है, तो नफ्स की इस्लाह जो है ना वो इसी के ऊपर मौकूफ है, और उसकी वजह भी यही होती है कि ये जो इबलीस का निज़ाम है ना, इस इबलीस के निज़ाम के खिलाफ जो है वो अल्लाह ताला ने इस शेख के निज़ाम को दुनिया के अंदर राइज किया हुआ है। ठीक है, नबियों का निज़ाम जो था नबी अलैहिस्सलाम के वक्त तक, और नबी अलैहिस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ ले गए, तो नबी अलैहिस्सलाम के वयुज़क्कीहिम वाला जो शोबा था जिसके लिए अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा था, वयुज़क्कीहिम, ठीक है, तो इस शोबे को मशाइख उजाम ने नबी अलैहिस्सलाम से विरसे में लिया, तो वो ये काम कर रहे हैं। तो हर दौर हर जमाने के अंदर ये मशाइख जो हैं दुनिया में मौजूद होते हैं, अब कोई इनसे जुड़े तो वो उनके शेख बन जाएंगे, कोई जुड़े नहीं तो फिर मौजूद तो हैं लेकिन लेकिन भाई जो डॉक्टर के पास आएगा तो वही डॉक्टर का पेशेंट कहलाएगा ना, और जो नहीं आएगा तो भाई डॉक्टर साहब तो अपना अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर साहब तो मौजूद हैं, पेशेंट ना आए तो इससे ये तो नहीं होता ना कि डॉक्टर ही मौजूद नहीं है तो क्या करें। भाई डॉक्टर तो मौजूद है, आप डॉक्टर के पास नहीं आए इस वजह से आपका इलाज शुरू नहीं हुआ और आपको जाहिर है फिर इफाका नहीं होगा। तो शैतान जहां मौजूद है तो वहां पे डॉक्टर्स भी अल्लाह ताला ने मौजूद रखे हैं, इन्हीं डॉक्टर्स को जो है वो शेर कहा जाता है। हमारे मशायख तो इस हद तक इसमें आगे जाते हैं, और जाहिर है वो आगे जाते हैं खाली ये नहीं कि जी वो जज्बात में आगे चले जाते हैं, बल्कि उनको हकीकत का पता है, समझते हैं इन बातों को, इस वजह से वो इतनी बड़ी बात फरमाते हैं जो कि हकीकत पर मबनी है, लेकिन हमारे लिए बड़ा मुश्किल है इसको हजम करना, क्योंकि हमारे साथ कोई हमारे पास तो कोई शेख है नहीं, इस वजह से हमारे लिए हजम करना बड़ा मुश्किल है। क्या बात फरमाते हैं? फरमाते हैं जिसका कोई शेख नहीं होता, जिसका कोई शेख नहीं होता उसका शेख शैतान होता है, जिसका कोई शेख नहीं होता उसका शेख शैतान होता है। ठीक है ना? अब जाहिर है जिनके शेख नहीं है तो वो हजम कर लेंगे इस बात को, उनका शेख जो है वो शैतान है। नहीं साहब सी बात हो, नहीं ये क्या क्या बात कर रहे हैं आप, मेरा शेख शैतान है, आपका होगा मेरा तो नहीं है। ठीक है ना? तो इसके ऊपर इंतहाई जो है वो एक सिवियर किस्म का बैकलैश मिलेगा, लेकिन भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने मशाए की विजडम के ऊपर, उनकी बसीरत के ऊपर, उनकी बसारत के ऊपर, और उनकी जो है ना वो समझ के ऊपर एतमाद है। वो जो फरमा रहे हैं वो ऐसे ही नहीं फरमा रहे, देख दाख करके और हालात और वाकयात को जान करके और उस एतमाद नबी अलैहि सलाम के सिलसिले के ऊपर, अल्लाह ताला के दीन के ऊपर मुकम्मल एतमाद करके इन सब बातों की रोशनी में ये बात फरमा रहे हैं कि जिसका कोई शेख नहीं होता उसका शेख शैतान होता है। ठीक है, हमने तो कुछ देखा ही नहीं, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हमने तो कुछ सोचा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है हमें ये बात समझ में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये है ख्वाहिशात नफसानी वाला मामला। तो भाई ये तो जहाद है ना, ये तो शेख कामिल की सोहबत पर मौकूफ है। तो कल हमने फिर सोहबत के टॉपिक के ऊपर भी बात कर ली थी कि लोग खवातीन खुसूसन कहती हैं कि हमें कैसे सोहबत नसीब होगी, हमें तो पर्दे में रहना होता है, और तो उसका भी जवाब कल डिस्कस हो गया था। ठीक है, और एक और जो टेंजेंट में जाकर के हमने बात डिस्कस करी थी कल, वो क्या थी कि ये जो आदतन का लफ्ज इस्तेमाल किया इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो मौजजा, करामत और इस्तिदराज, इसके तहत फिर डिस्कस हो गया था कल। आगे हम चलते हैं, अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें। आपने क्या सवाल लिखा है इधर डायरेक्ट मैसेज में कि तमाम सिराया इसमें आएंगे? नहीं, तमाम सिराया तो नहीं आएंगे। हाँ, नबी अलैहि सलाम ने तो किसी एक सरिया के मौके पर ही ये बात कही थी ना, जिसमें सहाबा ग्राम नबी अलैहि सलाम के बगैर गए थे। हर सरिये के ऊपर तो आप ये बात नहीं कि फरमाते थे, एक दफा कह दी ये वाली बात, लेकिन हाँ तमाम सिराया इसके अंदर इस तरह से दाखिल हो जाएंगे कि हाँ जब सरिये में गए हुए हैं सहाबा तो नबी अलैहिस्सलाम जो उनके शेख हैं वहां पर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ख्वाहिशात नफसानी के खिलाफ जो एक्टिव जिहाद हो रहा है वो मैदान जंग के अंदर वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि वहां पर नबी अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं थे। अब जब वापस आ गए नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत में तो अब जो है ना वो इलाज होगा। यानी ऐसे ही है जैसे कि एक जो है वो मरीज जो होता है ना, जो अंडर अंडर ट्रीटमेंट कोई पेशेंट है, तो एक्टिव इलाज उसका कब हो रहा होता है? जब वो डॉक्टर के निगहदाश्त में होता है, डॉक्टर की नजरों में होता है, या डॉक्टर की क्लिनिक में होता है, या डॉक्टर के हॉस्पिटल में होता है, उस वक्त कहेंगे कि ये एक्टिवली अपना इलाज करवा रहे हैं। और जब जो है वो दूर कहीं है, ठीक है, तो अगरचे के डॉक्टर की दवाएं उसके पास अभी भी हैं, डॉक्टर के मशवरे उसके पास अभी भी हैं, लेकिन चूंकि वो अभी दूर है डॉक्टर से तो उस वक्त उसको नहीं कहा जाएगा कि ये एक्टिवली अपना इलाज डॉक्टर के पास रह करके करवा रहा है, बल्कि एक पैसिवली एक एक काम चल रहा है उसका इलाज का। तो यही डिफरेंस है खाली इसके अंदर। ठीक है, कि जब वो मैदान जंग में थे तो उस वक्त भी नबी अलैहिस्सलाम के मुरीद ही थे, उस वक्त भी जो है वो आप के अंडर ट्रीटमेंट पेशेंट्स थे, रूहानी पेशेंट्स, अंडर ट्रीटमेंट पेशेंट्स थे, लेकिन क्योंकि फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में नहीं थे तो इस वक्त जो है वो उनका एक्टिवली इलाज नहीं हो रहा था, बल्कि पैसिवली इलाज हो रहा था। जब मदीना मुनव्वरा वापस आ गए तो अब जो है ना वो एक्टिव इलाज वाला प्रोसेस जो है फिर से शुरू हो गया। ठीक है, बस इतनी सी फर्क है इसके अंदर, बाकी एनीवे। तो कॉन्सेप्ट जो असल में हमारे लिए इसमें रेलिवेंट कॉन्सेप्ट ये था कि हम भी है ना ये सारी बातें समझें कि भाई हमारा भी कोई शेख है कि नहीं है। वही शेख जो पहले एक क्लास के अंदर बात हुई थी, आईना। ठीक है ना, आईना कोई शेख ही के लफ्ज को जो है ना आप आईने से भी ताबीर कर सकते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई आईना है। अगर आईना है तो तो फिर वो हमें हमारी फॉल्ट्स दिखाएगा ताकि हम उनको दूर कर लें, ठीक है ना, उनका इलाज कर लें, उनका जो है वो इस्लाह कर लें उनकी। और अगर कोई आईना ही नहीं है तो फिर क्या होता है जी, जल्दी से कोई बता दें, जब कोई आईना नहीं होता तो फिर क्या होता है, क्लास से क्लास में जो बात डिस्कस हो चुकी है रमजान मुबारक के दौरान कि जब आईना नहीं होता है तो फिर क्या होता है जी, अपनी तरफ से चीजें नहीं बताइएगा, क्लास में जो बात डिस्कस हुई थी इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, आईने वाले कॉन्टेक्स्ट में, वो क्या बात थी। आज हम जरा आपकी याददाश्त का इम्तिहान भी लेने पर उतर आए जी, जब आईना नहीं होता तो फिर क्या होता है anyone? अपने ऐब नजर नहीं आते, ये तो आपने जनरल बात कर दी है ना, हम तो खास क्लास वाली बात कर रहे हैं, क्लास में जिस टॉपिक के तहत ये बात हुई थी आईने वाली, अपने ऐब नजर नहीं आते, पानी पानी क्या मतलब, आईना नहीं होता तो पानी होता है, अपने आप को मजलूम समझना शुरू कर देता है हालांकि खुद जालिम होता है जी। जज़ाकुम अल्लाह, आप दोनों ने सही जवाब दिया है, खुद जालिम होता है, खुद जुल्म कर रहा होता है लेकिन अपने आप को मजलूम समझ रहा होता है, अपने आप को मजलूम समझ रहा होता है, ठीक है ना। और ये जो है वो इनफरादी लेवल पे कोई शख्स भी ऐसा कर रहा होता है, और पूरी पूरी कौम के लेवल के ऊपर भी ये हरकत कर रहा होता है, ठीक है ना। खुद पूरी की पूरी कौम जो है वो जुल्म कर रही होती है लेकिन अपना जुल्म नजर नहीं आ रहा होता, बल्कि किसी दूसरे को जालिम करार दे करके, जो कि होता भी है जालिम, ये नहीं कि वो जालिम होता नहीं है, लेकिन वो जो आपके ऊपर जुल्म कर रहा है तो भाई उसकी वजह क्या बन रही है, आपने अपने ऊपर जुल्म किया हुआ है इसकी वजह से उसको जो है वो मौका मिल रहा है आपके ऊपर जुल्म करने का, लेकिन अपने जुल्म के बारे में कोई बात नहीं करनी है, सिर्फ बात किसके बारे में करनी है, उसके जुल्म के बारे में करनी, सिर्फ उसके जुल्म के बारे में करनी है बात, है ना, उसी के जुल्म के बारे में सोचना है, उसी के जुल्म के बारे में जो है वो बातें शोर मचाना है, और फोरम्स के ऊपर जाना है, बैनुल अक्वामी फोरम्स के ऊपर जाते हैं, बैनुल अक्वामी फोरम्स के अंदर कौन होते हैं आज के दौर के अंदर, है ना, अल्लाह को ना मानने वाले या अल्लाह के रसूल को ना मानने वाले सारे के सारे जो है वो बैनुल अक्वामी फोरम्स के जो जो चौधरी हैं सारे के सारे काफिर हैं, राइट। तो अपना मुद्दा लेकर के किसके पास जा रहा है, काफिर के पास जा रहा है, और फिर उससे उम्मीद है? उनसे उम्मीद कि हाँ भाई ये हमारी मदद करेंगे, ये जो है वो हक का साथ देंगे, अल्लाह के बंदे उसने जो है वो रसूल का साथ नहीं दिया वो तुम्हारा कैसे साथ दे देगा, है ना, तुम ज्यादा अच्छे हो रसूल से, राइट, तुम ज्यादा जो है वो हक पर हो रसूल के मुकाबले में। तो काफिर तो वो होता है जिसने अल्लाह के रसूल का साथ नहीं दिया, अल्लाह के रसूल को मानने से इनकार कर दिया, वो तुम्हारा साथ देगा, यानी इसी को बस अब और कोई अल्फाज नहीं बच जाते इसके बाद कहने के, इसको कहते हैं मत मार दिया जाना, मत मार दिया जाना इसको कहते हैं, ठीक है ना भाई। तो आईना ना होने की वजह से फिर यहां तक पहुंचता है कि मत मार दी जाती है इंसान की। तो भाई आईना जो है ना, जिसको शेख कहते हैं हमारे दीन की जुबान के अंदर, ये कोई नफली चीज नहीं है, ये हो तो अच्छा है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, हम अच्छे हो जाएंगे उसके बगैर, नहीं भाई, अल्लाह ताला ने सिस्टम ही नहीं बनाया, ठीक है ना। हाँ, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, तो भाई एक्सेप्शन तो वो होती है जो सिस्टम से हट के चीज होती है, सिस्टम तो ये नहीं है ना, ठीक है ना, सिस्टम तो ये नहीं है ना। तो हम जो है वो हर चीज में जो हमारी नफ्स को भले ही लगती है ना, हम उसके अंदर एक्सेप्शन ढूंढते रहते हैं हर वक्त, और सिस्टम जो है वो उससे अपने आप को, हमें तो कोई जरूरत नहीं है सिस्टम की, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं कि हुज तबाकुम उम्मत मोहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की मुंतखब उम्मत है, तो हुज तबाकुम यानी उसने तुमको पसंद कर लिया। हजरत वासिला बिन असका रजी अल्लाह ताला अन्की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक ताला ने तमाम बनी इस्माइल में कनानह का इंतखाब फरमाया, ठीक है, यानी बनी इस्माइल तो आप हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, ठीक है ना, उनकी शादियां जो है वो जो दूसरा कबीला था, क्या नाम था उसका, जो मकाम कराओं में आके सेटल हो गया था, तो वहां पे शादियां करी, आपस में शादियां जो भी कजन वगैरह के साथ बदला, है ना, इस तरह ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और कितनी सारी नस्लें गुजरी एक मुकाम पे आकर के किनाना, ठीक है ना, एक इसकी ब्रांच का नाम जो है वो किनाना बना हुआ है, आदमियों के नामों के ऊपर ही फिर वो ब्रांचेस का वो तफसील, हमारी जो सीरत की क्लास थी उसमें बहुत तफसील के साथ हमने ये बात की। अब वो जहन में भी सारी तफसीलात नहीं है, मौका भी नहीं मिला दोबारा से उनको मुतालिया करके आपके लिए, कि किसके नाम पे किनाने का नाम पड़ा था, किनाना नाम पड़ा था। फिर किनाना के अंदर से फिर कुरैश को, यानी किनाना की फर्दर जो है वो नीचे जो औलादे हुई तो उनमें एक सब ब्रांच जो थी ना उसका नाम जो है वो कुरैश था। तो अल्लाह ताला ने किनाना में से भी कुरैश को पसंद किया, फिर कुरैश में से बनी हाशिम को पसंद किया, और फिर बनी हाशिम में से मेरा खिताब, मेरा इंतखाब फरमाया। ठीक है ना, अब नबी अलैहि सलाम ने 40 नस्लों की तफसील यहाँ पे बयान करनी होती तो हदीस पता नहीं कितनी लंबी हो जाती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस चीदा चीदा जो है ना वो जिक्र कर दिए हैं, वरना बनी हाशिम में से भी अल्लाह ताला ने ये भी कह सकते थे कि बनी हाशिम में से अल्लाह ताला ने बनी अब्दुल मुतलिब को पसंद किया, ठीक है ना, अब्दुल मुतलिब के जो है वो औलाद को पसंद किया, और फिर अब्दुल मुतलिब के भी कितने बेटे थे, 12 बेटे थे, 12 बेटों में से अल्लाह ताला ने मेरे वाले साहब अब्दुल्ला को पसंद किया, पर अब्दुल्ला का बेटा मैं ही था। ठीक है, लेकिन इजमाली बात होती है, इतनी तफसील हर जगह जब आने लगेगी तो फिर वही होगा जो हमारी क्लास के साथ होता है ना, एक क्लास के अंदर हम एक गया था ब्रेक, अनम्यूट नहीं कर पा रहा। अच्छा, तो इजमाल नबी अलैहिस्सलाम ने भी इजमालन बहुत सारी बातें फरमाई हैं, और कुरान मजीद में तो है ही इजमाल, तो इस वजह से यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक जनरेशन का जिक्र नहीं किया, बल्कि चीदा चीदा 3-4 बस जनरेशन का जिक्र कर दिया। तो इस तरह से ना इज्तबाकुम वाला जो प्रोसेस है वो इस तरीके से आप फरमाया कि हुआ है। ठीक है, आगे फरमाते हैं, वमा जअलना अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, यानी हमने तुम्हारे लिए दीन के अंदर, अद्दीन के अंदर, द रिलीजन, ठीक है, उसके अंदर तुम्हारे लिए हरज नहीं बनाया, कोई हरज नहीं बनाया। मिन का बताया था ना तर्जुमे में कि मिन बादिया होगा, यहाँ पर कोई हरज नहीं बनाया, यानी अल्लाह ताला ने दीन के मामले में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी। दीन में तंगी ना होने का मतलब बाज़ हज़रात ने बयान फरमाया कि इस दीन में ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो तौबा से मुआफ ना हो सके, ठीक है, हत्ता के सबसे बड़ा गुनाह, सबसे यानी नजस जो जो अमल है वो शिर्क है, ठीक है, हर दूसरे गुनाह से ज्यादा बड़ा गुनाह शिर्क है। लेकिन अगर किसी ने शिर्क कर लिया, मुसलमान था तो भाई, यानी इस दीन के अंदर था लेकिन उसने शिर्क कर लिया, अब काफिर हो गया, तो उससे भी वो तौबा कर लेगा तो वापस दीन इस्लाम के अंदर आ जाएगा, तौबा करने पे आ जाएगा, है ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह, बस आ गया वापस दीन के अंदर, ठीक है, और बाकी जो गुनाह है वो फिर इससे भी कम दर्जे के हैं तो तौबा करके वो माफ हो जाते हैं। अजाब आखिरत से, और ऐसा नहीं है कि अजाब आखिरत से खुलासी की कोई सूरत ना निकले, तौबा कर ली अभी भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे, अभी भी तुम्हें अजाब होगा इसके ऊपर, नहीं, बखिलाफ पिछली उम्मतों के उनमें बाज गुना ऐसे भी थे जो तौबा करने से भी मुआफ नहीं होते थे। ठीक है, जैसे कि उन लोगों ने जब शिर्क किया था ना, वो जो गौशाला परस्ती शुरू कर दी थी, बिछड़ा बना लिया था, और उसके बाद फिर उसकी, तो ये नहीं कि अब तौबा कर लो माफ कर देंगे, नहीं, फक्तुलू अनफुसकुम, बस तुम लोग अपने आप को कत्ल करो तब जो है वो तुम्हारी माफी कबूल होगी। हमें कोई कत्ल करने के लिए कहे तो हम तो क्या करेंगे फिर, उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकते उसके बाद ना, तो अल्लाह अल्लाह का शुक्र है तौबा, बस सिर्फ और सिर्फ तौबा। तो आगे हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि तंगी से मुराद वो सख्त व शदीद अहकाम है जो बनी इसराइल पर आयद किए गए थे, जिनको कुरान में इसर और इगलाल से ताबीर किया गया है, इस उम्मत पर ऐसा कोई हुक्म फर्ज नहीं किया गया। इसर और इगलाल वाली कोई आयत अगर हाफिज साहब को याद हो तो बता सकते हैं, लेकिन मुझे तहकीक का मौका नहीं मिला इसके, तो बहरहाल कुरान मजीद में ऐसे अहकाम थे जिनको इसर और इगलाल बहुत ज्यादा के अंदर, जैसे गुलू का लफ्ज पीछे हमने डिस्कस भी किया ना, यानी बहुत एक्सट्रीमिटी किसी चीज के अंदर, मोहब्बत में गुलू हो जाता है, नफरत में गुलू हो जाता है, उसी तरह अहकाम के अंदर शिद्दत ठीक है, तो उनके ऊपर ऐसे थे, इस उम्मत के ऊपर ऐसा कोई हुक्म फर्ज नहीं किया गया है। ठीक है, क्या मतलब? अब इसके ऊपर उलमा ने बड़ी जो है वो मिसालें लिखी हैं कि इस उम्मत के अंदर जो है ना वो देखें, जैसे जकात, अभी माशाल्लाह अक्सर लोगों ने जो है वो रमजान मुबारक में जकात निकाली होगी, तो जकात कितनी है? 2.5%, ठीक है ना। लेकिन पिछली जो उम्मतें थी यानी बनी इसराइल ही की, 10,000 से ज्यादा अंबिया, तो अक्सरियत तो वही है बनी इसराइल वाली, तो वहां पर क्या था? 1/4 ऑफ द माल, माल का चौथाई निकालना फर्ज था, ये उलमा ने लिखा है और यकीनन दलील के साथ ही लिखा होगा। एक चौथाई अगर हमसे कहें कि भाई जितना तुमने 100 रुपए कमाए ना, तो 25 जो है ना वो जकात देना है, सदका खैरात नहीं, जकात में तुमने 25 निकालने, तो क्या बनेगा फिर हमारा? ठीक है, उसी तरीके से अगर कपड़ा जो है वो नापाक हो जाता था ना, तो आप पानी से उसको पाक नहीं कर सकते थे, जिस तरह हम पानी से पाक कर लेते हैं, कितनी नजासत क्यों ना हो, मा अन तहूरा। ठीक है, उनको क्या करना होता था भाई? इस कपड़े को या तो फेंक दो, जो कि मुमकिन नहीं था उस जमाने में, उस जमाने में ये ऐसी वीविंग मिल्स और ये सब कुछ थोड़ी था कि भाई घरों के अंदर कपड़ों के अंबार लगे हुए हैं, और बड़ा सस्ता जो है वो आप बाजार से जाते हैं कपड़ा खरीद करके आराम से ले आते हैं, बल्कि आप तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। नहीं, उस जमाने में तो कपड़ा हासिल करना यानी वीविंग मिल्स नहीं थी ना, इस वजह से बहुत कम मौजूद चीजें मौजूद होती थी ना, कपड़ा वगैरह, और महंगा मुश्किल कितना होता था इनको इनको हासिल करना, और महंगाई कितनी उस लिहाज से होती होगी, यानी आज की तरह का मामला नहीं था। तो वो कपड़े को या तो तुम बिल्कुल फेंक दो, या ये कि उस नापाक वाले हिस्से को काटो। अब काटने के बाद कपड़े का क्या बनता होगा, राइट? तो कटे हुए कपड़े को आप पहन सकते हैं। अच्छा, फिर जो है वो इतना बड़ा मामला कि कोई रात को अगर छुप कर गुनाह करता था ना, तो ऐसा भी हुआ है कि दिन में उसके दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ होता था कि इसने रात को ये गुनाह किया है। तस्वर करें, राइट? दिन में जो है वो दरवाजे पे लिखा हो कि आपने रात को ये वाली हरकत करी है, यानी कैसी रात गुजारनी पड़ती होगी उन लोगों को, और गुजारते थे। ठीक है, यानी अच्छा, अब जो करते थे गुनाह, तो फिर वो उनके लिए जो है ना, फिर यानी अब सोच लें, रात को गुनाह किया, दिन में जो है ना वो आपके दरवाजे पे लिख दिया गया, ठीक है, तो जो जिल्लत और रुसवाई होगी, या तो वो कि कितने जलील होंगे, कितने रुसवा होंगे, या ये कि फिर क्या होगा अगर आप जिल्लत और रुसवाई जो है वो हैंडल नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा? बगावत आ जाएगी, बगावत, बागी हो जाएंगे वो लोग। अब सबके सामने पोल खुल गया है ना आपका, सबके सामने आपकी हरकतें सामने आ गई, अब जो है ना वो डर खौफ खत्म, अब तो अब खुल करके गुनाह करना है, क्योंकि पहले ही गुनाह खोल दिया गया, तो अब जो है वो छुपने की क्या जरूरत है। ठीक है ना, तो अब ये जो उम्मतें थी ना पिछले, अब गुनाह फिर ऐसे आगे बढ़ता था, ऐसे जो है वो, ठीक है, लेकिन ये सब जो था ना, ऐसा नहीं था कि कोई अल्लाह ताला ने इनके ऊपर जुल्म किया था, बल्कि अल्लाह ताला का ये उसूल हमेशा से है कि अल्लाह ताला इनके ऊपर जुल्म नहीं करता, ये अपनी जानों के ऊपर जुल्म करते हैं। दे हैड एक्चुअली डन सच थिंग्स टू डिजर्व ऑल ऑफ दिस। ये जो सख्ती जो है ना, ये इन्होंने अपनी, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना कट हुज्जती, कट हुज्जती, ठीक है, कि बहस मुबाहसा, और नबियों के साथ हम तो करते हैं ना अपने छोटे छोटे मौलवियों के साथ, राइट? तो भाई ये मौलवी जो है वो 14 साल गुजरने के बाद इनकी जाहिर वो दर्जा तो नहीं है ना इनका, ठीक है, ये तो करते थे डायरेक्ट अल्लाह के नबियों के साथ इस किस्म की हरकत, ठीक है ना, कट हो जाती वाली हरकत। तो और भी बहुत ज्यादा तकलीफें पहुंचाना, अजियतें पहुंचाना, यानी अच्छा, तकलीफें अजियतें तो अबू जहल ने भी पहुंचाई नबी अलैहिस्सलाम को, अबू लहब ने भी पहुंचाई नबी अलैहिस्सलाम को, ठीक है ना, तो फिर उन्होंने कौन सा ऐसा एक्स्ट्रा बुरा काम किया कि जिसकी वजह से उनके लिए इतनी सख्तियां। ठीक है, क्या लिखा आपने? आपने आप अपने आप पर जुल्म करने का मतलब गुनाह करना, जी, अपने आप पर, खुद अपने आप पर जुल्म करना का मतलब भी गुनाह करना ही है, और यानी हर किस्म का गुनाह जो है ना, चाहे वो अपने अपने खिलाफ कर रहे हैं, या मतलब किसी और के खिलाफ कर रहा है, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, कुरान मजीद को जो है वो छोड़ करके जो है वो कुरान के खिलाफ वाली चीजों को अहमियत दे रहा है, अजमत दे रहा है, ये सारा का सारा जुल्म है ना, तो यही मतलब है इन शॉर्ट के गुना इस जुल्म। کیا لکھا ماشاءاللہ آپ نے، آیت کو ریکارڈ کر دیا کہ الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرونهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. تو کانت علیہم، اللتی کانت علیہم، جو تھا ان کے اوپر. تو یعنی یہ جو ان کی حرکتیں تھیں نا، یہ تو امت مسلمہ کا ذکر ہو گیا کہ یہ معروف حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرَّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ٹھیک ہے نا. تو ان کے اوپر جو ہے وہ طیبات، جو پاکیزہ چیزیں ہیں، وہ ان کے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اور جو خبائث خبیث چیزیں ہیں وہ ان کے لیے حرام کر دی گئی ہیں. پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. یضعوا عنہم، یعنی ان کے اوپر سے اٹھا لیے گئے ہیں، اسرہم والاغلالو، ٹھیک ہے نا. اسرہم اور اغلالو والے جو بہت ہی ایکسٹریم قسم کے جو احکامات تھے نا، وہ اس امت کے اوپر سے اٹھا لیے گئے. کس امت کے اوپر؟ جنہوں نے نبی الامی کی اتباع کری ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کری ہے، ٹھیک ہے. جزاکم اللہ، تو آپ نے وہ آئے تھے آپ نقل کر دی، ٹھیک ہے. لیکن پچھلی امتوں کے ساتھ کیا تھا کہ یہ نبی کو نبی بھی مانتے تھے. بنی اسرائیل والے کیا تھے؟ یہ ہماری خاندان میں سے جو ہے وہ نبی مبعوث ہیں. ہاں جی، ہم آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ابو لہب کی طرح نہیں، ابو جہل کی طرح نہیں، بلکہ عبداللہ بن ابی کی طرح بھی نہیں، کیونکہ عبداللہ بن ابی بھی نبی علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا تھا. اوپر سے جھوٹ بولتا تھا کہ میں آپ کو نبی مانتا ہوں، لیکن نبی نہیں مانتا تھا. اور ابو لہب اور ابو جہل اور ولید پلید وغیرہ تو یہ بالکل ہی نہیں مانتے تھے، اوپر سے بھی نہیں بولتے تھے مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بنی اسرائیل کا مسئلہ کیا تھا کہ یہ اوپر سے بھی مانتے تھے، اندر سے بھی مانتے تھے نبی کو نبی، لیکن نبی کے ساتھ گندگی، بدتمیزی اور جھوٹ، دھوکا پھر بھی کرتے تھے، اور کٹ حجتی، بحث اور تکلیف پہنچانا، اذیت پہنچانا، یہ پھر بھی کرتے تھے. حالانکہ اوپر سے بھی مانتے تھے، اندر سے بھی مانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی. بات سمجھ میں آ رہی؟ فرق، یو سی دا ڈفرنس. فرق یہ تھا، جبکہ صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا کہ اوپر سے اقرار کر لیا، اندر سے تصدیق کر دی، ٹھیک ہے نا. اب جو ہے نا، وہ کمی کوتاہی صحابہ سے بھی ہو جاتی تھی، لیکن توبہ کر لیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزیاں نہیں کیا کرتے تھے، بدتمیزیاں نہیں کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. یہ جو بدتمیزی کرنی ہوتی ہے نا، یہ ایک ٹوٹلی الگ پیراڈائم ہے، یہ ایک بالکل الگ پیراڈائم ہے، ٹھیک ہے نا. جو کہ الحمدللہ امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا شکر ہے آج بھی موجود نہیں، ٹھیک ہے نا. ہاں، جو ایتھیسٹ ہو گئے، ایکس مسلم ہو گئے، ٹھیک ہے نا، وہ تو یہ کام کرتے ہیں، کر رہے ہیں، اللہ رحم فرمائے ہمارے اوپر اور ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ٹھیک ہے نا. مطلب دعا کرنے میں تو کچھ نہیں جاتا نا، دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی کہ توبہ کی توفیق مل جائے. کوئی بھی گناہ جو ہے وہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، ایکس مسلم ہو جانا بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو نبی علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں نا، وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایسا یا کوئی اختلاف ہے؟ نہیں ہے. میں نے تو دیکھا ہے بدتمیزی، بھائی عملی بدتمیزی کا مطلب میں نہیں، قولی بدتمیزی، ٹھیک ہے. تو یہ ان کی حرکتیں تھیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ اسرہم والاغلال، ٹھیک ہے. تو رات کو چھپ کے گناہ کر رہا ہے، دن میں جو ہے وہ اس کا گناہ جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے. اور اچھا، پھر ہمارے یہاں کتنی آسانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اصول، بلکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہے نا. اللہ تعالیٰ کسی نفس کے اوپر جو ہے اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اور کتنی آسانی ہے کہ جی وہ جو قصر کی نماز، آپ جب سفر کر رہے ہوتے ہیں جو ہے وہ قصر کی نماز ہوتی ہے، اچھا جو ہے آپ وضو نہیں کر سکتے، بہت زیادہ ٹھنڈک لگ رہی ہے، آپ کو بیمار ہو جانے کا خدشہ ہے، یا پانی اویلیبل نہیں ہے، تیمم کر لو. تیمم کتنا آسان کام ہے، ٹھیک ہے. پھر اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں علماء نے لکھی ہیں، ٹھیک ہے. ये तो हो गई थोड़ी सी तफसील इसकी इसकी के तंगी से मुराद वो सख्त व शदीद अहकाम है जो बनी इसराइल पर आयद किए गए थे, जिनको कुरान में इसर और इंगलाब से ताबीर किया गया है। इस उम्मत पर ऐसा कोई हुक्म फर्ज नहीं किया गया। अच्छा, एक हुक्म जिससे हम आजकल गुजर रहे हैं रोजे का हुक्म, राइट। तो रोजा क्या है? सिर्फ जो है वो डॉन से लेकर के डस तक, ठीक है, यानी तुलुए आफ्ताब से लेकर सुबह से लेकर के जो है वो गुरूब आफ्ताब तक 24 घंटे का रोजा होता, तो क्या कर लेते भाई। अच्छा, बाज हजरात ने फरमाया कि तंगी से मुराद वो तंगी है कि जिसको इंसान बर्दाश्त ना कर सके। इस दीन के अहकाम में कोई हुक्म ऐसा नहीं है जो फी नफसी ही नाकाबिल बर्दाश्त, यानी हुक्म तो ऐसा नहीं है कि जो नाकाबिल बर्दाश्त। बाकी रही थोड़ी बहुत मेहनत और मुशक्कत, तो वो तो दुनिया के हर काम में होती है। तालीम हासिल करने, फिर मुलाजमत, तिजारत व सनत में कैसी कैसी मेहनतें बर्दाश्त करना पड़ती हैं, मगर इसकी वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि ये काम बड़े सख्त व शदीद हैं, ठीक है ना। कि तालीम हासिल करना बड़ा मुश्किल काम है भाई, मुलाजमत करना बड़ा मुश्किल काम है भाई। भाई फी नफ्स ही तो ये मुश्किल काम नहीं है ना, इन ऑफ इट सेल्फ तो ये मुश्किल काम नहीं है। हाँ, कुछ वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपके लिए वो मुश्किल बना हुआ है, तो उस वजह को दूर करें तो फिर ये आपके लिए भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो माहौल के गलत और मुखालिफ होने या मुल्क शहर में इसका रिवाज ना होने के सबब जो किसी अमल में दुश्वारी पेश आए, वो अमल की तंगी और तशद्दुद नहीं कहराएगी। करने वालों को इसलिए भारी मालूम होती है कि माहौल में उसका कोई साथ देने वाला नहीं है। जबी तो साथ देने वालों की फिक्र करनी करनी जरूरी है, ठीक है ना। अपने हम यानी मजहब लोग, अपने हम जो है वो ख्याल लोग, उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ जाकर के करीब होना, उनके सोहबत इख्तियार करना, किस लिए कि मुश्किल चीज जो लग रही है वो आसान हो जाए। मिसाल के तौर पर आप कहीं भी रहते हो इस दौर जमाने के अंदर, नेकी करना और गुनाह से बचना कितना मुश्किल काम है, लेकिन जब आपके चारों तरफ ऐसे लोग मौजूद हों जो कि सब जो है वो इस कोशिश के अंदर लगे, बेशक सब ये नहीं कि सारे वलीउल्लाह के दरमियान बैठना उठना बैठना नहीं, कोशिश में लगे हुए लोगों, तो इंसान को एक सिनर्जी मिलती है, एक ऐसी एनर्जी मिलती है जो कि आपके माहौल से आपको मिल रही होती है, ठीक है ना। तो उसको सिनर्जी कहते हैं अंग्रेजी में इसका वर्ड। तो वो अमल की तंगी तशद्दुद नहीं कहलाएगी। करने वालों को इसके लिए भारी मालूम है, माहौल में कोई इसका साथ देने वाला नहीं है। जिस मुल्क में, अब एक बड़ी सादा सी मिसाल दे रहे हैं कि जिस मुल्क में रोटी खाने पकाने की आदत ना हो, तो वहां रोटी हासिल करना किस कदर दुश्वार हो जाता है वो सब जानते हैं, मगर इसके बावजूद ये तो नहीं कहा जा सकता कि रोटी पकाना बड़ा सख्त काम है ना भाई। भाई अमेरिका में जब आप तो खैर पराठे भी मिलते हैं और सब कुछ मिलता है, बाजार में भी पैक मिलता है सब कुछ, है ना। लेकिन आज से 25 साल पहले जो लोग अमेरिका में रहते थे, हमने वो जमाना देखा है। शुरू में का दौर ऐसा था कि इस किस्म की कोई चीज जो है नहीं मिलती थी, पता नहीं कितना सफर करके लोग हलाल गोश्त लेने के लिए, लोग जो है वो दो दो घंटे सफर करके हलाल गोश्त जो है ना वो अपनी गाड़ी के अंदर भर भर करके जो है वो लेकर के जाते थे अपनी शहर में, अपने स्टेट में, और वहां पे फ्रीजर डीप फ्रीजर खरीद खरीद करके उसके ऊपर स्टफ करते थे, फिर उसको जो है वो महीनों खाते रहते थे। फिर उसके बाद जी अब जो अब हलाल और डिवान जाना है जी शिकागो के अंदर, तो मिलवॉकी से और मेडिसन से और यानी कहाँ कहाँ से घंटों सफर करके हलाल गोश्त के लिए आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अभी हलाल गोश्त जो है वो मुश्किल चीज है, ठीक है ना। आप ऐसे माहौल में गए हैं, वो अभी हमारे घर वाले बता रहे थे अपनी किसी आंटी का कॉल कॉल मुबारक के अमरीका आए हो तो फिर लाते तो पड़ेंगी, हालांकि बाहर जो है वो इतनी नींदार नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको ये बात समझ में आती है कि अमेरिका में जाकर के फिर दीन का जो हुलिया बिगड़ता है, तो फिर तो भाई अमेरिका आए हो तो हुलिया तो बिगड़ेगा ना। वो तो उनसे बेहतर हुई ना ये वाली आंटी, बड़े दीनदार लोग जो के क्या कह रहे हैं कि अमरीका में तो दीन असल दीन है, और अमरीका से तो दीन जो है ना वो पाकिस्तान में अब आ रहा है, और पाकिस्तान वालों को अब दीन समझ में आना शुरू है क्योंकि अमरीका से आना शुरू है। आप कुछ लोग शायद इसको अजीब समझ रहे होंगे, कुछ लोग जो है वो इस पर यकीन करते होंगे, हाँ सही तो कहते हैं वो, लेकिन आई एम श्योर कि मेजोरिटी ऐसे लोगों की होगी क्योंकि आप लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा है। क्या कहेंगे ये किस किस्म की बात करें कि अमेरिका से दीन जो है वो पाकिस्तान में आ रहा है, लेकिन वाकई आप यकीन करें ऐसे लोग मौजूद हैं इस वक्त, ठीक है ना, जो कि ओरिजिनली तो पाकिस्तानी होते हैं लेकिन वो समझ रहे हैं कि अमरीका में जिस दीन के ऊपर अमल किया जा रहा है और जिस दीन की अब तक तरबीज इशारत हो रही है ना, ये असल दीन है, और अब जो है वो पाकिस्तानियों को भी इंटरनेट की वजह से अब असल दीन समझ में आना शुरू है, ठीक है। तो बहरहाल क्या किया जाए, कंपाउंड जहालत भी कह सकते हैं उसको। एनीवे, तो भाई हलाल गोश्त और ये इस तरह की चीजें जो है वो, तो अब जब आप इस जगह पे ऐसी जगह पे जाकर के रहते हैं तो फिर ये तकालीफ आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये को थोड़ी है कि दीन ही जो है वो मुश्किल है। आपने अपने मुश्किल को दावत दी अपने लिए, आप चाहते थे कि आपके जो है वो अच्छी जॉब लगे, अच्छे पैसे मिले, अच्छे जो है वो गाड़ी हो, अच्छा जो है बंगला हो, तो अब बंगले गाड़ी के लिए आप उधर गए हैं, तो भाई दीन तो फिर आपका कॉम्प्रोमाइज होगा ना। और ऐसे कॉम्प्रोमाइज होगा कि आपके लिए तो अमल करना मुश्किल था, आपकी जो अगली नस्ल होगी वो तो मानने से ही इनकार कर देगी दीन के अहकाम को, ठीक है ना। तो दीन जाता है ना ऐसे ऐसे जाता है, फिर शुरू में अमल करना मुश्किल होता है और बाद में फिर उसको मानना ही मुश्किल हो जाता है, जो कि इस वक्त चल रहा है अमेरिका यूरोप वगैरह के लोगों के साथ। अच्छा, मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन और ऑलवेज देयर, माशाल्लाह कुछ एक्सेप्शन हैं जो कि वहां पर भी जो सही शरीयत और सुन्नत वाला दीन है उसको पकड़ के बैठे हुए हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम है ना, प्रोपोर्शन उनका बहुत कम है। बहरहाल आगे फरमाते हैं कि हजरत काजी सनाउल्ला पानीपति रहमतुल्ला रहे, पानीपत के थे ये, और हजरत मिर्जा मदहर जाने जाना रहमतुल्ला रहे के बड़े मुरीद खास थे ये, बहुत बड़े फकीह अपने जमाने के थे। तो उन्होंने तफसीर लिखी जिसका नाम उन्होंने अपने शेख के नाम के ऊपर रखा, तफसीर मजहरी। ये नक्शबंदी सिलसिले के बड़े मशायख में इनका शुमार होता है, हजरत मजहर जाने जाना रहमतुल्ला रहे। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्ला रहे के हम असर थे और बड़े करीबी ताल्लुक वाले थे ये आपस में, सब दिल्ली में होते थे ये। तो इनके जो मुरीद है ना काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी तफसीर तफसीर मजहरी में फरमाया कि दीन में तंगी ना होने का ये मतलब भी हो सकता है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को सारी उम्मतों में से अपने लिए मुंतखब फरमा लिया है, इसकी बरकत से इस उम्मत के लोगों को, यानी जो अपने लिए खास किया है ना कि ये मेरी पसंदीदा उम्मत है, अल्लाह के लिए कोई चीज पसंदीदा हो गई तो फिर उसके अंदर बरकत ही बरकत माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से, क्योंकि बरकत होती है, तो इसकी बरकत से इस उम्मत के लोगों को दीन की राह में बड़ी बड़ी मशक्कत उठाना भी आसान हो जाता है, बल्कि लजीज हो जाता है। ठीक है, जैसे बिलाल हज़रतान, उमर, ये क्या कहते हैं, यासिर, यासिर और सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा और दीगर जो है सहाबा कराम, है ना, इतनी शदीद मोहब्बत जो है वो अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से और आखिरत की जन्नत से, ठीक है ना, कि गोश्त भी कोई काट रहा है, जैसे वो एक साहबी थे या गालिबन ताबई थे कि जिनको जो है वो झूठी नबूवत के एक मुद्दई ने जो है वो पकड़ लिया था, गालिबन मुसैलमा कज़्ज़ाब ने शायद उनको पकड़ लिया था, और उनको जो है ना वो बांध करके उन जिंदा हालत में उनका गोश्त काटना शुरू किया था, गोश्त का एक टुकड़ा काटते थे और कहते थे कि क्या तुम अभी भी नबी अलैहिस्सलाम इस, यानी ना, पूछते थे ईमान के बारे में, कहते थे नहीं कि नहीं तुम मेरा गोश्त काट दो, है ना, जिंदा इंसान का गोश्त काटा जाए ना, कोई आपके एक छोटा सा एक कांटा चुभ जाए तो फिर क्या असर होता है हमारा, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हत्ता के शहीद हो गए, जान इनकी निकल गई, लेकिन ही डिड नॉट बच। कैसे, मोहब्बत इतनी शदीद होती है, इतनी शदीद होती है कि फिर कोई भी चीज उसके आगे नहीं रखती, नहीं हैसियत रखती, कोई भी तकलीफ। क्या आपने लिखा कि अमेरिका और कनाडा से आने वाले मोटिवेशनल स्पीकर से दीन समझ रहे हैं, कह भी रहे हैं कि अब दीन हकीकत में समझ में आया। जी बिल्कुल, ठीक है ना, एक साहब जो है कनाडा पलट, वो आकर के जो है वो यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल बनाते हैं और जो है वो लोगों को दीन सिखाना शुरू कर देते हैं जो आज तक उनको लोगों ने नहीं सिखाया था, और सारे जो है ना वो उनको सुन करके कहते हैं हाँ वाकई ये अभी इन्होंने असल दीन जो है वो खोला है हमारे ऊपर। ठीक है, तो अंग्रेजी में कोई आकर के ब्रिटिश एक्सेंट में, अमेरिकन एक्सेंट में कोई अंग्रेजी की कोई दीन की तबलीग करे, ओहो सुनना बहुत जरूरी है ना, ये असल दीन तो इन्होंने समझा है, ब्रिटिश एक्सेंट हो तो उससे भी ज्यादा अहमियत हो जाती है इसकी। ठीक है, वो तो पता नहीं, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट जो है वो आज तक नजर नहीं आया, वहां पर भी से भी कुछ आना शुरू हो जाएगा, वो ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट का बड़ा फर्क होता है। खैर, तो क्या फरमाया कि जी इसकी बरकत से उस उम्मत के लोगों को दीन की राह में बड़ी बड़ी मशक्कत उठाना भी आसान बल्कि लजीज हो जाता है, मेहनत से राहत मिलने लगती है, खुसूसन जब दिल में हलावत ईमान पैदा हो जाए तो सारे भारी काम भी हल्के फुल्के महसूस होने लगते हैं। हदीस सही में हजरत अनस रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जालत कुर्रतु आईनी फिस सलात, सही कहा, मेरे सर्फ नाव जो है वो सारी निकल गई अब दिमाग से, کہ نماز جو ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ عین، میری آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے نا وہ نماز کے اندر ہے، بنا دی گئی ہے یہ ٹھنڈک، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کی توفیق سے میں نماز کی مشقت، اور نبی علیہ السلام والسلام کی نماز کیسی ہوتی تھی، ہماری نمازوں جیسی نہیں ہوتی تھی، بلکہ لمبی قرآتیں، ہے نا، پورے سورہ بقرہ جو ہے وہ ایک رکعت کے اندر ہو گئی، پوری سورہ آل عمران جو ہے دوسری رکعت کے اندر ہو گئی، گھنٹوں کھڑے ہوئے ہیں، حتیٰ یہ تورما قدم آ ہو، دونوں قدم جو ہے نا ان میں ورم آ جاتا، اور اتنا لمبا رکو کہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھائی کیا ہو گیا، کہیں کچھ جان نہ نکل گئی، اتنا لمبا سجدہ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہے نا آ کر کے پیچھے سے انگوٹھا شریف جو ہے نا وہ ہلا کر کے دیکھ رہی ہے کہ بھائی زندگی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جان نکل گئی ہو سجدے کی حالت میں، اتنا لمبا سجدہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ تو عام حالت میں تھا، کل جو شیخ ندوی صاحب کا بیان تھا، یہ عام حالت میں نبی علیہ السلام وسلم کی نماز ایسی ہوتی تھی، رمضان المبارک میں اس کو بھی بڑھا دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر جو ہے نا وہ ایسی ہوتی تھی. ابھی بھی الحمدللہ لمبی نماز اگر بہت نہیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے اندر جو حلاوت ہوتی ہے، قرآن مجید کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، تو آج بھی اللہ والے جو ہے وہ الحمدللہ آنکھوں کی ٹھنڈک والی نماز پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں. ملت ابیکم ابراہیم، ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہے نا وہ دو کلاسز تو ہم نے اسکپ کر دی ہیں، تو یہ ایک تھوڑا سا پڑھ کے پھر وہ ملت اور امت والی بات کے اوپر بھی آ جاتے ہیں آج کی کلاس کے اندر، کہ ملت ابیکم ابراہیم، یعنی یہ ملت ہے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی. یہ خطاب دراصل مؤمنین قریش کو ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں. پھر سب لوگ قریش کے تابع ہو کر اس فضیلت میں شامل ہو جاتے ہیں، جیسے حدیث میں ہے کہ الناس تبع القریش فی حاضر شانی مسلمہم تبع مسلم لمسلمہم وکافرہم تبع لکافرہم، ٹھیک ہے؟ کہ یعنی سب لوگ اس دین میں قریش کے تابع ہیں، مسلمان مسلمان قریش کے تابع ہیں اور کافر لوگ کافر قریش کے تابع ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی قریش کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلت دی کہ ایون قریش کے کافروں کو بھی جو ہے نا وہ دوسرے کافروں کے اوپر فضیلت حاصل ہو. عجیب، جب یہ فضیلت جو ہے وہ کوئی پازیٹیو فضیلت نہیں ہے، یعنی جہنم کے اندر جو ہے نا وہ فضیلت حاصل ہوگی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کافر قریش جو تھے ان کو جہنم میں فضیلت کیوں حاصل ہو گئی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے محبوب کے ساتھ جو ہے وہ گستاخی کا معاملہ کیا، نافرمانی کا معاملہ کیا. دنیا کا کوئی دوسرا کافر جو ان کے بعد اس دنیا میں آیا تو اس نے ڈائریکٹلی اللہ کے نبی علیہ السلام کا انکار نہیں کیا، انڈائریکٹلی انکار کیا. نبی علیہ السلام سامنے نہیں تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی کفر کی انٹینسٹی کبھی بھی اتنی نہیں ہو سکتی جتنے کہ اس شخص کے کفر کی انٹینسٹی ہوگی، شدت ہوگی، جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، نبی علیہ السلام کو جانا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کے ساتھ جتنے کافر تھے وہ پوری دنیا کے کافروں سے جو ہے وہ افضل ہیں کفر کے اندر، شدت کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو مشہور حدیث بھی ہے جس کے کہ اور بھی تشریحات کی جا رہی ہوتی ہیں، اور بھی ہیں اس کی تشریحات، لیکن یہ بھی اس کے اندر شامل ہے کہ میرا فرعون جو ہے وہ موسیٰ کے فرعون سے زیادہ سخت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی ایک تو آسان وجہ تو یہی بیان فرمائی کہ جی اس نے جو ہے وہ مرنے کے وقت کلمہ پڑھ لیا تھا اور میرے فرعون نے تو مرنے کے وقت بھی کلمہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کی سختی جو ہے وہ اس وجہ سے بھی، جو کہ نبی علیہ السلام نے بیان نہیں فرمائی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ نہیں تھی، ٹھیک ہے، کہ نبیوں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے پھریں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم تو افضل الانبیاء نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں نا. تو بھائی موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا جو کہ کلیم اللہ تھے، لیکن جو ابو جہل فرعون تھا اس نے اللہ کے حبیب اللہ یعنی حبیب اللہ کا انکار کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور حبیب اللہ جو ہے وہ کلیم اللہ کے مقابلے میں تو افضل ہے نا، ٹھیک ہے؟ بہرحال تو یہ تو قریش کی اتباع کی بات ہو گئی. اب جو ہے نا وہ ذرا ہم جلدی سے وہ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ رکنا نہ پڑے، کہ ملت اور امت کے بارے میں جو علماء نے کلام کیا ہے، یعنی جو اس کو ایکسپلین کیا ہے तो वो हमारे हजरत ने ना अपने एक बयान के अंदर समझाया था कि आजिज ये चाह रहा था कि उसी को आपके सामने कोट कर दें। तो हजरत ने कोई अपनी तरफ से कोई तौजीह और तशरीह की नहीं करी है, बल्कि उलमा ही ने जाहिर है जिस तरह से इस बात को समझा और समझाया है तो उसी को हजरत ने नकल किया था अपने उस बयान के अंदर। तो उसमें फरमाया था कि जो मिल्लत का लफ्ज है ना, तो उसका मानी ये होता है कि ऐसे तमाम लोग जो कुछ बुनियादी उसूल और जवाबित के तहत जिंदगी गुजार, कुछ बुनियादी उसूल और जवाबित के तहत, बुनियादी यानी बेसिक्स उनके कॉमन है, ठीक है ना, उसूल और जवाबित में बेसिक्स उनके कॉमन हो, ठीक है, तो ऐसे लोगों को जो है ना वो मिल्लत कहा जाता है, ठीक है। अब ये मिल्लत के जो लफ्ज है ये नबियों की तरफ मुजाफ होता है, नबियों की तरफ, कि मिल्लत इब्राहिम, ठीक है, अल्लाह की तरफ मिल्लत का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, मिल्लत अल्लाह नहीं कहा जा सकता, मिल्लत इब्राहिम। और मिल्लत इब्राहिम क्यों कहते हैं, मुसलमानों को, यहूदियों को और ईसाइयों को, क्योंकि उन तमाम अंबियाए कराम को ये लोग मानते हैं, ठीक है, बेसिक्स को मानते हैं कि भाई हाँ ये अल्लाह ताला के नबी हैं, ठीक है ना। अगरचे के मुसलमानों में और यहूदियों और ईसाइयों में इतना फर्क जरूर है कि मुसलमान जो है वो आखिरी को भी मानते हैं और पिछले सालों को भी मानते हैं, ईसाई जो है वो सेकंड लास्ट को मानते हैं और पिछले सालों को भी मानते हैं, और यहूदी जो है वो थर्ड लास्ट को मानते हैं, बल्कि यहूदी जो है वो एक्चुअली यानी ईसा अलैहि सलाम को भी अपने थे तो उन्हीं के नस्ल में से था ना, ठीक है ना, बनी इसराइल, इसराइल में से ही थे ना ईसा अलैहि सलाम भी, तो कह सकते हैं कि यहूदी जो है वो थर्ड लास्ट को मानते हैं यानी यहया अलैहि सलाम तक को मानते हैं, यहया अलैहि सलाम के बाद जो है वो ईसा अलैहि सलाम है और ईसा अलैहि सलाम के बाद नबी अलैहि सलाम सलाम, ठीक है, तो वो जो है वो यहूदियों को मानते थे, ईसा अलैहि सलाम को नहीं मानते थे। या एक आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है कि ईसा अलैहि सलाम को भी मानते थे लेकिन जैसे सारे नबियों के साथ बदतमीजियां करते थे उसी तरह ईसा अलैहि सलाम के साथ भी उन्होंने बदतमीजी करी यहूदियों ने, ठीक है। तो बहरहाल फिर भी ईसा अलैहि सलाम के साथ उन्होंने बड़ी ज्यादा आगे बढ़ करके बदतमीजी करी है, बहुत ज्यादा जो है ना उनको कत्ल करने के जो है वो खुद सारे के सारा इंतजाम किया। तो यहूदियों और ईसाइयों में यह है कि वो लास्ट एंड सेकंड लास्ट को नहीं मानते, ठीक है, लेकिन बाकी सबको तो मानते हैं ना, जिनको मुसलमान भी मानते हैं, तो ये बिल्कुल बेसिक्स बुनियादी यानी कॉमनैलिटी है, तो इस वजह से मिल्लत इब्राहिम कहा जाता है। अच्छा, मिल्लत इब्राहिम में कुछ और भी बातें हो सकती हैं शामिल, कई अंबिया को मानने के साथ साथ जो है वो कुछ और एक्शंस को भी किया, जैसे कि ये कोशर के बारे में बात हुई थी, जबीहा, तो जबीहा का जो तरीका है ये यहूदियों में और मुसलमानों के दरमियान कॉमन है, ठीक है, ईसाइयों में भी इब्तिदा में कॉमन था लेकिन जब यहूदियों ने साजिश करके ईसाइयों का बिल्कुल ही जो है ना वो हुलिया बिगाड़ दिया ना, तो उसके बाद फिर ईसाइयों ने झटका खाना शुरू कर दिया, ठीक है, लेकिन अभी भी ईसाइयों के दरमियान इसके कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट और कहीं कोई टेक्स्ट जो है ना वो मिल जाएगा कि जबीहा इज द बेटर वे, ठीक है। शराब के बारे में भी वो कोई नापसंदीदा, हराम तो खैर मुसलमानों में भी पहले नहीं थी शराब, लेकिन नापसंदीदा जो है ना वो सारे मजाहब के अंदर, ठीक है, तो ये बुनियादी चीजें हैं जिनके ऊपर ये सारे के सारे एग्री करते हैं, तो इस वजह से ये मिल्लत कहलाएंगे, ठीक है। हालांकि इनका ना जमाना एक है, बहुत फर्क है जमानों के अंदर, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम की जो उम्मत है और मूसा अलैहिस्सलाम की जो उम्मत है, ईसा अलैहिस्सलाम की जो उम्मत है, दरमियान में बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है ना। अच्छा, मकान में भी बहुत ज्यादा फर्क है कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो अरेबिया के अंदर थे और मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो मिस्र के अंदर थे, ठीक है ना, और जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो मिस्र से यहाँ पर आए थे, यहाँ पे कोहिनूर वगैरह है, वादी सीना, ठीक है ना, और ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो बिल्कुल यरूशलम और यानी फलस्तीन वगैरह के इलाके के अंदर थे, तो जमाना भी सेम नहीं है इनके दरमियान, मकाना भी सेम नहीं है, मकान जिसको कहते हैं, लोकेशन भी सेम नहीं है इन दोनों इनके दरमियान, ठीक है ना, और इनका हाल जो है वो वैसे देखा जाए तो हाल भी बड़ा फर्क नजर आता है, ठीक है, तो लेकिन बुनियाद सेम है, इस वजह से ये मिल्लत कहलाते हैं, मिल्लत इब्राहिम सारे के सारे। अच्छा, उम्मत की क्या डेफिनेशन उलमा ने बयान फरमाई है, उम्मत की ये है कि ये लफ्ज आमतौर पर ऐसी जमात के लिए इस्तेमाल होता है कि जिसका हाल एक हो, जमान एक हो या मकान एक हो, ठीक है, तो ये चीज जो है ना फिर नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत यानी हर हर नबी की अपनी एक उम्मत होती है, उम्मत मूसा, उम्मत ईसा, उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मते इब्राहिम, जिसमें खाली उस जमाने के जो है वो लोग आएंगे। ठीक है, तो ये था फर्क। अगर किसी को सवाल है तो पूछ लीजिए। मिल्लत और उम्मत की बात हो गई। इन व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, हर उम्मत में कोई ना कोई डराने वाला गुजरा है। ठीक है, तो भाई मूसा अलैहिस्सलाम की भी अपनी एक उम्मत थी, उसमें जो है मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम डराने वाले गुजरे, और जो है वो नूह अलैहिस्सलाम की अपनी एक उम्मत थी, और इस तरह। ठीक, कान नासु उम्मतन वाहिदतन। अच्छा, ये एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सारे के सारे इंसान जो है ना वो एक उम्मत वाहिद है। ठीक है ना, वो किस तरीके से कि उम्मत वाहिदा थे। ठीक है ना, इसकी इस आयत की तफसीर क्या है कि उम्मत वाहिदा थे, कान नासु उम्मतन वाहिदतन, सारे के सारे एक उम्मत थे। क्या मतलब कि मेजोरिटी इंसानों में ना एक वक्त ऐसा भी आ गया कि जिसके अंदर मेजोरिटी जो थी ना इल्ला माशाल्लाह कुफर किया था सारे के सारे। ठीक है, फिर अल्लाह ताला ने ना नबी भेजे, नबी ने जो है उनको कुफर से निकालने की मेहनत शुरू करी। वलव शा रब्बुका लजअल अन्नासा उम्मतन वाहिदा, अगर अल्लाह ताला चाहता तो तमाम इंसानों को एक उम्मत बना देता, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा चाहा ही नहीं। चले, तो कोई अगर सवाल नहीं है तो फिर हम यहाँ पे अपनी क्लास को खत्म करते हैं। बाकी इंशाल्लाह कल। वा आखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।